तो सेवा मतलब एक सेवा करने वाला होना चाहिए, एक जिसकी सेवा की जाए वो होना चाहिए, और बीच में सेवा होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, तभी सेवा का मतलब है। अगर निराकार है, उसमें मर्ज हो जाना है, तो कौन किसकी सेवा करेगा, वहां सेवा का कोई प्रश्न नहीं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब सेवा, प्रेम केवल इमोशन नहीं है, प्रेम एक्सप्रेस्ड इन एक्शन। एक पत्नी है और पति को प्रेम करती है यदि, और पति पूरा दिन मेहनत करके घर आता है, तो पत्नी बोलती है आई लव यू, वेस्टर्न कल्चर है, उनको बताना पड़ता है कि आई लव यू, नहीं तो पता नहीं लगता कि प्रेम करती भी कि नहीं करती। तो इसलिए वेस्टर्न कल्चर की जब भी बोलना पड़ता आई लव यू, अभी वो आई लव यू हो गया, लेकिन पति कह रहा है ठीक है अभी भूख लगा है, खाना मतलब खाना नहीं बनाया, बस आई लव यू। तो फिर क्या वो लव कहलाएगा? तो लव केवल इमोशन नहीं है, बस आई लव यू। लव मीन्स प्रैक्टिकल एक्टिविटी, व्हाट माय ऑब्जेक्ट वांट्स, हाउ टू प्लीज द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड लव। तो भगवत प्रेम मतलब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, तो वो हमारी नित्य क्रिया है, इटर्नल एक्टिविटी है। इटर्नल धाम पता लग गया, इटर्नल एक्टिविटी पता लग गया, तो हम उस अपने नित्य अपने स्वाभाविक घर से इस भौतिक जगत में आए हैं। तो ये भौतिक जगत क्या है? घर तो नहीं है, तो फिर क्या है? इसकी उपमा कैसे दी थी हमने? ये भौतिक जगत फिर क्या है हम लोगों के लिए? किस तरह से एक कंपैरिजन हमने दिया था, हमारे लिए भौतिक जगत क्या है? यस हैं जी, एक खिलौने की तरह से है, जिसमें हम लोग क्या है? यस अक्षय, सोने का पिंजरा, सोने का, लोहे का, जैसा भी है, कारावास, कारागार, इट्स लाइक प्रिजन, केज, हम इसमें बंद गए हैं, इसलिए आकर के हम फ्री नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? क्या क्या हमको बंधन है यहाँ? आत्मा को यहाँ क्या क्या बंधन है? हैं जी, सेंसेस, सेंसेस तो आप एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा तो बंधन कैसे हुए सेंसेस? यस यू आर राइट, सेटिस्फाई करते हैं, तो बंधन क्या हुआ उसमें? बंधन मीन समथिंग विच यू डोंट वॉन्ट बट यू आर, बट यू आर फोर्स टू डू। यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम नहीं चाहते हैं ना, लेकिन हमको फोर्स किया जाता है, तो ये बंधन हुआ ना, तो ये इम्प्रिजनमेंट। और हमें अपनी इंद्रियों को के वेग को संतुष्ट करने के लिए हम जबरदस्ती करना पड़ता है, वी कैन नॉट हेल्प इट, माइंड, हम सब चाहते हैं मन पे वश करना, सब चाहते हैं ना, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि ये मन हमको चला रहा है, इसलिए हम मन को हम देखते हैं, नहीं चाहते हैं ऐसा सोचना, लेकिन फिर भी मन के अंदर विचार आते हैं, इच्छाएं आती हैं, और फिर हम विवश हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस समय माया के जो ये एजेंट हैं, अनेक अनेक एजेंट हैं, उसमें से जो प्राथमिक मन और ये इंद्रियां, इनके द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। तो इस पिंजरे के अंदर, इस जेल के अंदर जंजीर क्या है? हर एक जेल में एक लॉक होता है ना, जंजीरें होती हैं रोक के रखने के लिए। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में कैदियों को यहां रोकने के लिए, क्योंकि कौन कैद में रुकना चाहेगा? कैद में पनिशमेंट होता है, देखो कितना पनिशमेंट है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, अनेक अनेक क्लेश हैं, शरीर से उत्पन्न होने वाले, मन से उत्पन्न होने वाले, दूसरे जीवों से हल्लन, बाढ़, ये सब हर दिन नई नई समस्याएं हैं। तो इस जेल में हमको यहां कैद करने के लिए जंजीरें क्या है, किस चीज की बनी है वो जंजीरें? Somebody else who has not answered, yes, हैं जी, रिलेशनशिप किसके साथ? इन नटशेल कि जो इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसमें सब आ गए, अपने सगे संबंधियों के साथ हमारा, जिससे हमको लगता है हाँ अच्छा है, अच्छा है, रहना अच्छा है, सेक्स प्रेशर, सभी सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों में, तो वो हमको जंजीर है, बांध के रखता है हमको, जाने देता हमको, इच्छा नहीं होती बाहर जाने की, ऐसा जेल है। इतना फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट है यहाँ पर, कि यहाँ पर कैदी को ऐसे गेट खुला देते हैं, लेकिन उसकी जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जंजीरें सटल हैं, सूक्ष्म जंजीरें हैं, सूक्ष्म जंजीरें हैं। कैसी? कि आदमी को माया के वश में हमको लगता है अच्छा है ये जीवन, हर रोज हर दिन लाभ घूसे खाते हैं हम लोग माया के, लेकिन फिर भी हम सोचते नहीं अच्छा है। तो माया का दो प्रकार की शक्ति होती है, इल्यूजरी एनर्जी जो है उसकी दो प्रकार की शक्ति होती है, आवरणात्मिका शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। आपने देखा है कभी दुर्गा जी का, दुर्गा देखा ही होगा ऑब्वियसली, तो उनके हाथ में क्या रहता है, त्रिशूल रहता है, वो सिंबलाइज करता है त्रिशूल। दुर्गा जी जो है उनका नाम दुर्गा क्यों है जानते हैं? दुर्ग का मतलब क्या होता है, दुर्ग, किला, फोर्ट, तो ये बहुत ही जगह एक फोर्ट है, किला है, जेल, जेल की बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना, देखा आपने तिहाड़ जेल, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, ऐसे ही ये बहुत ही जगह एक जेल है जिसमें बड़ी ऊंची दीवारें, दुर्ग की तरह से, क्योंकि यहां से बाहर निकलना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इस बहुत ही जगत के चक्र से निकलना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको दुर्ग कहा गया है। और जो दुर्ग की जो स्वामिनी है, सुपरिंटेंडेंट है जेल की, जेलर, वो कौन है, दुर्गा, इसलिए उनका नाम है दुर्गा, वो यहां पर इसके इंचार्ज हैं, इस जेल की इंचार्ज हैं, और उनके हाथ में है त्रिशूल जो पनिश करती रहती हैं, यहां जितने भी जीव हैं उनको सबको पनिश करती रहती हैं, तीन तीन भाल होती हैं, तीन नोक, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश, मिजरीज, कष्ट जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, वो कष्ट जो दूसरे जीवों से मिलते हैं, और वो कष्ट जो प्राकृतिक आपदाओं से मिलते हैं। तो इस प्रकार से हर क्षण हम दुर्गा से हमको पनिशमेंट मिलता है, और साथ साथ हमको लुभाने के लिए ये बहुत आकर्षक जगत भी है, तो एक तरफ हमको आकर्षित करते हैं, आओ आओ आओ, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है, ये भोग करो, देखो ये भोग करो, ये भोग करो, और जब हम भोग करने आते हैं तो चाटा, फिर हमको लगता है ये बेकार है जगत। जब हम शमशान में जाते हैं तो क्या होता है, किसी का कोई मृत्यु आता है, कभी कभी शमशान जाना पड़ता है, तो शमशान में जाते हैं हमको पूरा वैराग्य आता है, हम लोग सब फिलोसफर बन जाते हैं शमशान के अंदर, है ना, आपने देखा शमशान में सब फिलोसफर बन जाते हैं, सब बात करते हैं, अरे भाई जगत में कोई शक नहीं है, ये सब बेकार है, ये सब सब फिलोसफर बन जाते हैं शमशान में आते, लेकिन शमशान के बाहर आते ही फिर दोबारा से वही इश्यू आता है, तो इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। तो ये माया दोनों काम करती है, एक तरफ तो कहती है आओ आओ एंजॉय करो इस जगत को, और फिर चाटा मारती है, जब चाटा मारते हैं हम रोते हैं, फिर वैराग्य आता है हमको थोड़ी देर के लिए, हम बोलते हैं ये बेकार है, ये बहुत ही जगत, मंदिर जाते हैं, फिर जब कोई कष्ट आता है किसी को, कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई नियर डियर की डेथ हो जाती है, या घर में कोई बहुत तकलीफ आती है, अगर वो पायस है, पुण्यशाली है, तो मंदिर भागता है, भगवान बचाओ बहुत कष्ट है, और जैसे ही पूरी हुई इच्छा, ओके बाय बाय, भूल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये दुर्ग में, यहाँ पर इस जेल में फंसे हुए हैं, और ये शलाखें हैं हमारी, जंजीरें हैं ये भौतिक एंजॉयमेंट, मेनली सेक्स डिजायर, सबसे जो प्रोटोटाइप है सभी प्रकार के एंजॉयमेंट में, जो हमको यहाँ बांधे रखती है, जीव की इच्छा नहीं होती है जाने की यहाँ से, वो सोचता है लाइफ इज वेरी नाइस, एक सुअर देव गटर में पड़ा हुआ है लेकिन सोच रहा है आई एम द हैप्पीएस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। तो ये माया की, माया मतलब क्या होता है, माया का किसी को अर्थ पता है, शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ माया, हम माया माया बोलते हैं, माया का मतलब क्या, हाँ बोलो, नहीं पीछे, हाँ जो नहीं है ऐसा प्रतीत होना, यानी इल्यूजन। तो इसमें यह हर चीज माया भी है, हर चीज जो है वैसी नहीं है, लगती है वैसी, तो यहां जो हमें सुख लगता है वो सुख नहीं है, दुख है लेकिन लगता है सुख, और जो सुख है वो सुख नहीं लगता, वो लगता है दुख। तो भगवान की भक्ति सेवा, जप करना, सुबह जल्दी उठना, ये सब में कोई टेस्ट नहीं आता है, लगता है क्या इससे अच्छा तो पिक्चर देखते, तो इल्यूजन है, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, टॉपसी टर्वीड। तो ये है माया जगत, और ये तीनों गुणों से संचालित हमने देखा, और हमने देखा कि जब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे, जब तक हम इस जेल में पड़े रहेंगे, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे मछली यदि इसको पानी के बाहर निकालें तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है, ऐसे यदि आप ये एक चीज इस पूरे 6 सेशन में समझ लें तो हम समझेंगे कि ये सफल हुआ, कि हमें जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं माया के द्वारा कि तुम ये प्राप्त कर लो तुम सुखी हो जाओगे, तुम ये प्राप्त कर लो सुखी हो जाओगे, ऐसा कर लो ये सुखी हो जाओगे, ये सब प्रलोभन झूठे हैं। ये सब मछली, मछुआरा कैसे मछली पकड़ता है, मछली को प्रलोभन देकर के, आओ खाना है खाना, मछली होती है आज तो फीस है, वो इसकी मृत्यु का कारण बनता है। पतंगा वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, अरे कितना सुख है, लेकिन वही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। हाथी, हाथी कैसे पकड़ा जाता है, सर्कस वाले लोग हाथी कैसे पकड़ते हैं, खाना नहीं रखते हैं, घास तो रखते हैं पर वो आता कैसे है उसमें, एक हथनी होती है ट्रेन, और हाथी हथनी के पीछे भागता है, और वो ट्रेन हथनी है, उसको पता है कहाँ गड्ढा है, तो वो इस तरीके से आती है कि हाथी गिर जाता है। तो सेक्स की वजह से जो जानवर मरा वो हाथी, आँख की वजह से जानवर जो मरा पतंगा, टेस्ट सेंसेशन की वजह से जो जानवर मरा वो मछली, और हिरण, हिरण को सुनने का, म्यूजिक सुनने का बड़ा शौक होता है, तो जो हंटर होता है वो क्या करता है, बांसुरी बजाता है, और हिरण सब आके खड़े जाते हैं, मुग्ध जाते हैं, और फिर आराम से उनको मार देता है, तो सुनने की उससे वो हिरण मरता है। तो ऐसे ये सब जो इंद्रिय भोग की जो प्रलोभन है ये हमारे लिए डेथ ट्रैप है। जैसे चूहे को पकड़ते हैं डेथ ट्रैप, ऐसे ही ये सब इंद्रिय भोग के जो प्रलोभन माया हमको दे रही है हर क्षण, हर क्षण हर चीज आप देखो, और आजकल तो मॉडर्न एज में तो ये बिल्कुल ब्लैटेंट हो गया है, बिलबोर्ड्स हर चीज में आपको प्रलोभन दे रहा है, आओ कम एंजॉय योर लाइफ इज नॉट फुल परफेक्ट इफ यू डोंट हैव दिस मोबाइल, दिस पर्टिकुलर मॉडल, और इफ यू डोंट गो फॉर हॉलीडेज इन लंडन स्पॉन्स थ्रू दिस ओवरसीज ट्रेवल्स देन योर लाइफ इज नॉट ओवर, सो मेनी थिंग्स, प्रलोभन ही प्रलोभन हर क्षण पे आपको माया के एजेंट्स प्रॉमिस दे रहे हैं, यू विल बी हैप्पी बाई दिस, यू विल बी हैप्पी बाई दिस। लेकिन अगर आप सिक्स सेशन अटेंड किए हैं तो जब भी आप प्रलोभन देखें तो आपको ये स्टेटमेंट याद आना चाहिए कि ये सब प्रलोभन है, ये क्या है, हमारे लिए डेथ ट्रैप है। अगर आप उनको स्वीकार करते हैं तो आप पाएंगे कि आप और अधिक इंटेंगल्ड होते जा रहे हैं, आपका आप और ज्यादा फंसते जा रहे हैं कष्टों में इस भौतिक जगत में, तो ये समझना है। तो फिर आज का हम क्लास जो लास्ट क्लास है, कंक्लूडिंग सेशन है, तो फिर उसमें फिर ये प्रश्न उठता है, ठीक है अभी समझ तो गए कुछ हद तक, कुछ हद तक ही समझे हैं, इसको बार बार सुनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माया का एक काम है फॉरगेटफुलनेस, बार बार भुलाए थे, आप यहां से थोड़े से बाहर निकलेंगे सब गायब हो जाएगा, ऐसे बार बार याद करना पड़ेगा, तो ये जस्ट बिगनिंग है। तो ये कुछ हद तक समझ लेने के बाद कि हमारी ये जो वर्तमान सिचुएशन है ये अननेचुरल है, तो फिर आज हम अभी हम डिस्कस करेंगे, और हमने ये भी देखा कि हमारी नेचुरल पोजीशन क्या है, तो फिर अभी आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो फिर अपनी आज की इस अननेचुरल पोजीशन से निकलकर अपनी नेचुरल पोजीशन पर जाने का रास्ता क्या है, व्हाट इज द वे टू रीच बैक अवर नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन इज जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप है नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, अगर जीव केवल यह विश्वास कर ले कि वो कृष्ण का दास है तो और कोई दुख नहीं। कृष्णा भूलिया से जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झपट जाए, कृष्ण को भूल करके ही हम यहां पर अनेक अनेक कष्ट भुगत रहे हैं। तो फिर अगर आप ये समझ गए हैं कि, और आपके अंदर इच्छा अभी है कि अगर समझे हैं तो इच्छा होगी, अगर नहीं समझे हैं तो इच्छा नहीं होगी, अगर समझे हैं कि हम यहां पर जेल में हैं और यहां से हमको निकलना है, हमने गलती की है, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और अभी वापस अपने घर जाना चाहते हैं, जेल से निकलना चाहते हैं, वंस फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर आज की क्लास प्रारंभ होती है। तो फिर क्या तरीका है वापस अपने घर जाने का? यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो 6 दिन पहले जब आप यहां थे तो जीवन के लक्ष्य के विषय में कोई फिक्स्ड कंसेप्शन अधिकतर लोगों का नहीं होगा। जो पेरेंट्स ने बोल दिया, पेरेंट्स को सुखी करना, पैसा कमाना, जॉब लेना, लेकिन वास्तव में जीवन का लक्ष्य, अल्टीमेट एम क्या है, उसके विषय में कोई क्लियर कट आइडिया नहीं। लेकिन आज ये 5 सेशन कंक्लूड होने पर और आज का सेशन कंक्लूड होने पर कम से कम हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये 6 दिन में हमने कम से कम ये तो पता लगाया कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य ये है, तो वो जो आपने प्राप्त किया वो आपने आज तक अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया जो आपने इन 6 दिनों में प्राप्त किया। करेक्ट। अगर हमको आज तक यही नहीं पता लगा था कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन है, तो फिर आज तक जो हम कर रहे थे वो तो अंधे में अंधकार में तीर मारने जाता है, ऐसे ही बस चल रहे थे बिना जाने कि हम कौन है, कहां जा रहे हैं, भेड़ चाल, जहां सब चल रहे हैं वहीं चल रहे थे। लेकिन अगर ये 6 सेशन अटेंड करने के बाद आप ये कन्विंस्ड हो जाएं, ये आपको क्लियर हो जाए कि मैं कौन हूं, क्यों यहां आया हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझको जाना है, मेरा अंतिम गंतव्य क्या है, ये मात्र जान लेने से ही आपके जीवन में सभी चिंताएं तो समाप्त हो जाएंगी, यहीं पर एंग्जाइटीज वहीं खत्म हो जाएंगी। एंग्जाइटी आदमी क्यों होती है? अज्ञानता से होती है। जब आप पहली बार किसी जगह जाते हैं, मान लीजिए आप पहली बार बॉम्बे गए फर्स्ट टाइम, या अमेरिका में उतरे आप पहली बार, तो वहां का सिस्टम क्या है, कैसे टिकट लेना है, कहां जाना है, बस कैसे मिलती है, कुछ पता नहीं है आपको। तो आप उतरेंगे तुरंत आपके हृदय में एक एंग्जाइटी होगी, चिंता होगी, क्या करूं, किससे बात करूं, क्या, कहां जाना है, चिंता होगी। कहीं भी आप नई जगह आते हैं तो चिंता होती है ना, एंग्जाइटी होती है, क्या करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन आपको जब पता है, यहां विद्यानगर में आप हमेशा बहुत समय से रहते हैं, क्या हाँ टिकट मिलेगा, क्या होगा, आपको कोई जस्ट ऐसे आराम से आ सकते हैं, कोई चिंता नहीं। तो ऐसे ही जब हमको ये पता लग जाए कि हम आखिर कौन है, कहां हमको जाना है, तो हमारी चिंताएं अधिकांश समाप्त हो जाती है। वी नाउ क्लियरली नो व्हाट फॉर वी आर हियर। और पूर्ण रूप से चिंताएं तब समाप्त हो जाती हैं जब हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य पे। आप में से कितने लोग बाई शिप या बाई एयर ट्रेवल किए हैं? ओके, ओनली वन, बट एनीवे अदर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। जब हम हवाई जहाज में होते हैं या शिप में होते हैं तो अंदर से हमको एक डर होता है, ना जाने प्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा, ना जाने शिप रैक तो नहीं हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन अभी हम यहां बैठे हैं, हमको ऐसा डर है नहीं, वो थियोरेटिकल है, पर डर तो नहीं है आपको। करेक्ट। अगर यही हम क्लास शिप पे ले रहे होते तो शायद आप ध्यान भी नहीं दे पाते, आपको लगता बाहर अगर हवा आती आंधी की, अरे तूफान आ गया, अभी क्या होगा, तुरंत चिंता रहती। लेकिन चिड़िया तो हमेशा उड़ती रहती है, क्या उसको कभी डर होता है? जो चिंता हमको होती है हवाई जहाज में, हवा में उड़ने में, क्या चिड़िया को उड़ने में वो डर होता है? क्या मछली को पानी में वो डर होता है? क्यों नहीं होता है? और हमको क्यों होता है, कौन बताएं? यस, हाँ, क्योंकि वो उनका स्वाभाविक स्थान है मछली का, उसको मजा आता है, जब लहरें और ऊंची होती है तो उसको और आनंद आता है, और हमको डर लगता है क्योंकि वो हमारी नेचुरल पोजीशन नहीं है। तो जब तक हम हमारी नेचुरल पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें चिंताएं रहेंगी। इसलिए जीवन का लक्ष्य है समझना कि हमारी नेचुरल पोजीशन क्या है और वहां पहुंचना। इस एम को फिक्स होने में किसी को कोई डाउट है, किसी को कंफ्यूजन है अभी तक? यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर इसके अलावा आप कोई लक्ष्य कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हमारा कुछ और लक्ष्य है, तो आप बोलिए। क्या आप सभी सहमत हैं इस लक्ष्य से कि जीवन का लक्ष्य हो तो यही होना चाहिए कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचना, और जो है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, ये मेटेरियल बॉडी हम नहीं हैं, मन भी नहीं है, हम एक एबनॉर्मल सिचुएशन में हैं, हमें इससे निकलकर वापस अपने स्वामी भगवान की शरण में जाना है। क्या इसमें किसी को कोई शंका है? तो यदि आप ये सहमत हैं इस सब से, तो फिर आपको रुचि होनी चाहिए अभी जानने में। तो ठीक है, फिर कैसे जाना है वापस? तो कैसे जाना है, बहुत सिंपल है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सिंपल है क्योंकि नेचुरल है, कोई भी चीज नेचुरल होती है बड़ी सिंपल होती है। तो हमें वहां जाकर क्या करना है, सेवा करनी है। हम यहां क्यों आए हैं? सेवा नहीं करना चाहते थे, भूल गए, भूले हुए इस समय सेवा करना। तो वापस कैसे पहुंचेंगे? सेवा भावना को पुनः जागृत करके। जब दोबारा से सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी तो फिर वापस ट्रांसफर कर दी जाएंगे। और वो सेवा भावना कैसे डेवलप होगी? सेवा कर करके डेवलप होगी। दैट्स ऑल, सिंपल। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब भगवान की सेवा करने का प्रयास। और जब हम सेवा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो हमारी पुनर् वो जो भूली हुई चेतना है, भगवान को सेवा करने की जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, वो पुनः स्मृति हमको हो जाती है। जैसे कोई आदमी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा होगा उसकी याददाश्त हो जाती है, वो भूल जाता है उसके माँ बाप कौन है, उसका घर कहाँ है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग हैं, हम भूले हुए हैं माँ बाप कौन है, सब कुछ भूले हुए। अभी वो स्मृति को पुनर् वापिस याद दिलाना है। तो क्या करते हैं, जो आदमी की स्मरण शक्ति चली जाती है उसको उसी के घर में वापस ले जाते हैं, उसी सिचुएशन में रखते हैं उसको। तो धीरे धीरे बार 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 उसी सिचुएशन में रखने पर धीरे धीरे उसकी स्मृति वापस आती है। ऐसे ही भगवान की कृपा से भगवान ने हमको ये प्रोसेस दिया है कि कैसे हम अपनी इस वर्तमान भूली हुई स्थिति में भी उनकी सेवा करना प्रारंभ करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, और करते करते सेवा करते करते धीरे धीरे जो हम ये भूल गए हैं अपने को भगवान के सेवक हैं, हम ये भूल गए हैं, वो स्मृति हमको पुनर् प्राप्त होती है, दोबारे से प्राप्त होती है। और जब हम परफेक्शन पे पहुंच जाते हैं, दोबारे से परफेक्टली हमको याद आता है, स्मरण आता है कि हम भगवान के दास हैं, हम भोक्ता नहीं है, ये भावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है कि हम भोक्ता हैं और कि हम भगवान के दास हैं, ये पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, तो फिर हम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये शरीर जो हम त्यागेंगे तो हमारा एक परीक्षा होगा, ये शरीर त्यागना एक परीक्षा है। डेथ को ऐसी चीज नहीं जिससे हमको डरना है। जिसको पता नहीं है कि ये परीक्षा है और परीक्षा में कैसे पास होना है, वो डरते हैं परीक्षा से, लेकिन जो परीक्षा की तैयारी करते हैं वो परीक्षा से डरते नहीं है। तो सब लोग डेथ से डरते हैं, लेकिन भक्त डरता नहीं है, वो उसके लिए क्योंकि तैयारी करता है पूरा जीवन। तो डेथ जो है वो परीक्षा है, और जिसमें आपने जीवन भर जो तैयारी की है उसके आधार पर निश्चित होगा कि आपको अगला शरीर कौन सा मिलेगा, वो हमने पहले ही डिस्कस किया। यम यम वापी स्मरण भावम त्यत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेया स्लातद भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अंत समय में जो जिस प्रकार की चेतना में स्थित होगा उसको उसी के अनुरूप शरीर मिलेगा। तो वो है क्राइटेरिया मार्क्स का कि आप अंत समय में जिस चीज का स्मरण करेंगे उसके अनुरूप आपको शरीर मिलेगा। आप यदि इसी भौतिक जगत का चिंतन करेंगे तो आपको इसी भौतिक जगत में कहीं ना कहीं आपकी कर्म के अनुसार पुनर् शरीर मिलेगा। और यदि आप कृष्ण का स्मरण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम नात्यत्र संशयः। हे अर्जुन, अंतकाले अंत समय में माम एव, एव मीन्स ओनली, जो केवल मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति अंत समय में जो प्रयाति जो जाता है मेरा स्मरण करते हुए जाता है शरीर से, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर, कलेवर से जाता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति, प्राप्त करता है मेरे अबोध को, मेरे धाम को प्राप्त करता है। नात्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, कृष्ण इज गिविंग गारंटी कि अगर आप मेरा स्मरण करते हो देह त्यागेंगे तो निश्चित रूप से मेरे धाम आएंगे, और फिर यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद धामम परमम ममा, और मेरे धाम आने के बाद देन यू विल नेवर बी अगेन बॉर्न इन एनी ऑफ दिस बॉडी, फिर दोबारा से शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी शरीर प्राप्त करेंगे, यानी भौतिक प्राप्त करेंगे शरीर, भगवत धाम जाना मतलब अपने स्वयं जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है वो प्रकट होना, आध्यात्मिक जगत में जाने का मतलब विलीन होना नहीं है निराकार में, उसका मतलब है कि जो भी हमारा स्वरूप जो ढका हुआ है जड़ शरीर से वो स्वरूप प्रकट होगा, मैनिफेस्ट होगा, और उस स्वरूप के साथ हम भगवत धाम जाएंगे तब हमारा ये दोनों शरीर खत्म हो जाएंगे। साधारण रूप से क्या होता है, जब हम शरीर त्यागते हैं तो हमारा कौन सा शरीर नष्ट होता है, स्थूल के सूक्ष्म स्थूल, और सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा को दूसरे शरीर में ट्रांसफर करता है, समझ में? जैसे वायु किसी भी पुष्प की गंध को पुष्प से हमारी नाक तक ले आती है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक शरीर से, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में ट्रांसफर करता है। लेकिन जब हमको भगवत धाम जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं भगवान की भक्ति सेवा करके, तब हमारा स्थूल शरीर भी नष्ट होता है और हमारा सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है, और हमारा जो स्वाभाविक स्वरूप है आध्यात्मिक शरीर स्पिरिचुअल बॉडी वो मैनिफेस्ट होता है, जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। तो आध्यात्मिक शरीर में भी इंद्रियां हैं, वहां पर भी आंख कान नाक इत्यादि है, मन है, बुद्धि है, लेकिन वो सब स्पिरिचुअल है। वर्तमान में जो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं ये उसी के ऊपर एक आवरण है, ढका हुआ है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर ये ड्रेस। तो आध्यात्मिक स्वरूप में भी हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, भगवान की भी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, उनका भी आध्यात्मिक मन है जिनसे वो सोचते हैं, इच्छा करते हैं, हमारी भी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। तो जब ये कलमश हट जाता है भौतिक इंद्रियों का, तब आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होता है, और उस स्वरूप में हम भगवत धाम जाते हैं और वहां पर भगवान की इंद्रियों की सेवा करते हैं, नित्य सेवा में दोबारा से पहुंच जाते हैं, निर्लग्न हो जाते हैं, एंड इटर्नली वी आर देयर। तो इसमें यह परीक्षा में पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए देह त्यागना होगा, यह हमारा टारगेट होना चाहिए, मरते दम भगवान का स्मरण होगा। तो फिर आप में से कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे बोलेंगे ठीक है अभी मजा करते हैं, बाद में एंजॉय, बाद में भगवान को याद कर लेंगे लास्ट मोमेंट में, आई एम वेरी क्लेवर, मैं दोनों काम कर लूंगा, अभी एंजॉय कर लूंगा बाद में स्मरण। लेकिन ये भगवान का अंत समय में किसी भी चीज का स्मरण करना मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, वो मात्र आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि आपने जीवन भर जैसी इच्छाएं की हैं और जैसे कर्म किए हैं, जिन चीजों के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाया है, उसके आधार पर निश्चित होगा कि आप अंत समय में किस चीज का स्मरण कर पाएंगे। तो अंत समय वो समय है कि जब आप पूरे जीवन की जो आसक्तियां हैं उसके आधार पर आपकी फाइनल स्टेट ऑफ माइंड बनता है, और उसके आधार पर आपको शरीर मिलेगा। तो यह आकस्मिक नहीं होने वाला कि अभी एंजॉय करेंगे बाद में लास्ट में कृष्ण का नाम ले लेंगे, आप कृष्ण का नाम नहीं ले सकते उनकी कृपा के बिना, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे आसक्ति रखनी होगी। जब आप भगवान को प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे अपनी पत्नी या माता पिता या अपने कुत्ते को, तो अंत समय उसी का स्मरण आएगा, स्वाभाविक है। जब कोई तकलीफ आती है तो हम किसको याद करते हैं, जो हमको सबसे प्रिय होता है उसी को याद करते हैं। तो यदि आपने जीवन भर भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाया नहीं, तो अंत समय में कैसे आपको इनका स्मरण आएगा, इम्पॉसिबल। इसलिए भक्ति क्या है, भक्ति प्रोसेस क्या है? भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना, यह है भक्ति। सिंपल, मैं आसक्त मन पार्था योगम युंजन मदाश्रया, यही योग है। योग नहीं है वो जो प्राणायाम कर लो डायबिटीज के लिए, योग साधना हो गई। योग कभी भी डायबिटीज के लिए नहीं होता है, वो डायबिटीज हट जाती है, वो सेकेंडरी इफेक्ट है उसका, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट योग का पर्पज डायबिटीज हटाना नहीं है कि डायबिटीज हटाओ और फिर खूब रसगुल्ले खाओ और खूब एंजॉय करो। फिर योग मीन्स टू कनेक्ट टू गॉड। तो एक तरफ योग सिखाओ जिससे लोग तंदुरुस्त हो जाए और खूब इंद्रिय भोग करें, देन द पर्पज इज डिफीटेड। योग मतलब है इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय विषय वस्तु से बाहर निकलो, भगवान से अपना संपर्क बनाओ। तो आजकल जितना भी तथाकथित योग चल रहा है, इट इज मिस यूजिंग योगा प्रैक्टिस। तो वो योग है कि भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना, और उसका प्रोसेस है मैं आसक्त मन पार्था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, मेरे में अपनी आसक्ति को बढ़ाओ। तो और फिर कह रहे हैं, उससे पहले कह रहे हैं योगी नामति सर्वेशां मदगते अनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। सभी प्रकार के योगियों में, अनेक अनेक प्रकार की योग साधनाएं हैं, भगवान बताए सब, लेकिन सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपनी सर्वेशम एमंग ऑल द योगी मद गतेर अंतरात्मना, जो हमेशा अपने मन में मेरा स्मरण करता है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से मेरी सेवा करता है। भजन मतलब सेवा करना, भज धातु का होता है सेवा करना संस्कृत। जो श्रद्धा से मेरी सेवा करता है समय युक्त तमो मतः, मेरे अनुसार वो उत्तम योगी है। और भगवान श्री कृष्ण की ओपिनियन से ऊपर किसी और की ओपिनियन हो सकती है? ही इज योगेश्वर, ही इज ईश्वर ऑफ योगा। उनकी ओपिनियन से अच्छी ओपिनियन किसी, ही इज न केवल योगेश्वर, वो सभी योगी शक्तियों के स्वामी और योग के अंतिम लक्ष्य हैं। तो वो योगेश्वर कह रहे हैं कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है भक्त। इससे भगवान बार बार भगवत गीता बताए हैं मद भक्त मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्त। भगवत गीता के 18 चैप्टर में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं पूरी भगवत गीता को लास्ट में, और फिर कह रहे हैं मैंने तुम्हें अपनी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताई, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताई। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कि हम आत्मा है, वो सब निराकार का ज्ञान बताया कि मैं सब जगह व्याप्त हूं। मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज परमात्मा के बारे में बताया। नाउ अभी सुनो मेरी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवदगीता भगवान लास्ट में कंक्लूड करते, नाउ हियर अटेंटिवली माई मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्य ज्ञान मेरा जो है वो सुनो, एसेंशियल, मोस्ट एसेंशियल। पूरी भगवदगीता का सार मोस्ट एसेंशियल क्या है? वो दो श्लोक क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु बामे वैश्यसि सत्यंते। कि हमेशा मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा स्मरण करो, मन मना हमेशा मेरा स्मरण करो, मन मना भव मद भक्त मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरी पूजा करो। हम सोच रहे ये पत्थर की क्यों पूजा करनी चाहिए? अरे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पत्थर के रूप में आऊंगा, वो पत्थर नहीं रह जाएगा, वो भगवान होंगे। लेकिन नास्तिक सोचते हैं ये पत्थर है, भगवान के लिए कोई असंभव नहीं है। हम पत्थरों के अलावा इस समय भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान पत्थर के रूप में आते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भगवान के लिए असंभव है क्या? है अगर असंभव है तो भगवान कैसे हो? भगवान वैसे भी हर जगह व्याप्त है, लेकिन विशेष रूप से ये जो मंदिर के अंदर जो विग्रह स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होती है, जिसमें भगवान के भक्त भगवान को प्रार्थना करके उनको बुलाते हैं कि आप पर्सनली यहां आइए, भगवान कृपा करके उस विग्रह में आते हैं हमारे लिए, हमारे लिए, जिससे कि हम उनकी सेवा कर सके और उससे शुद्ध हो सके। भगवान की सेवा करने की जरूरत किसको है? भगवान को कि हमको? हमको जरूरत है, भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान तो पूर्ण है। तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं क्योंकि भगवान को देख नहीं सकते हैं, कैसे उनकी सेवा करेंगे? जब तक आध्यात्मिक इंद्रियां डेवलप नहीं हुई है तब तक। तो भगवान कृपा करके अर्च्य विग्रह के रूप में आते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान बताते हैं पूरा विवरण कि इस प्रकार से मेरे अर्च विग्रह को स्थापित करो, ये 8 प्रकार की धातुओं से स्थापित होता है, ये सब विज्ञान शास्त्रों के द्वारा दिया गया है कि मेटल का बना हो सकता है, मिट्टी का बना हो सकता है, कलर का बना हो सकता है, कास्ट का बना हो सकता है, ये सब बताया विवरण। और शास्त्रों भगवान का रूप का विवरण दिया गया है, श्याम सुंदरम वेणुम कुनंतम अरविंदाक्ष, कि भगवान वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंगी हैं, श्याम वर्ण के हैं, उनके सिर के ऊपर मोर पंख है। ये कल्पनाएं नहीं है, एक पोएट की कल्पना नहीं है, एक लवर की उसकी काली काली आंखें, दिस इज नॉट ए मंडेन पोएट्री, ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्म संहिता। जब उन्होंने भगवान की सेवा करके, भगवान ने उनके हृदय में गोलोक धाम और अपने को दर्शाया, तो भगवान का दर्शन करके भगवान के रूप का विवरण कर रहे हैं। आप मनमोहन सिंह या कोई भी उनको देख के आए और यहां पर एक्सप्लेन करें मनमोहन सिंह जी ऐसे हैं, वो लगभग इतने ऊंचे हैं, उनका रंग ऐसा है, तो ब्रह्मा जी स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन करके भगवान का पानी ला सकते, तो भगवान को वो विवरण दे रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, वो कल्पनाएं नहीं है। और फिर उन शास्त्रों में दिए गए निर्देशों के अनुसार भगवान के उनको बनाया जाता है विग्रह को, और फिर उनकी प्रतिष्ठा, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान कृपा करके आप आपके इसमें रहिए। तो एक हमारे भारत में एक व्यक्ति हुए हैं, तो देखे अरे भाई ये सो कॉल्ड भगवान यहां विग्रह में है और इनके ऊपर तो इनका जो खाने को रखा गया खाना उसे तो चूहे खा गए, जानते हैं आप ये। तो क्योंकि चूहा खा गया, जब ये भगवान अपने खाने की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर ये कैसा भगवान है, ऐसा तर्क देते हैं। मंदिर में से यदि विग्रह चोरी हो गया, ये कैसा भगवान है, ये तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो हमारी क्या रक्षा करेगा, फिल्टर वाटर। तो उन मूर्खों को ये नहीं पता, यहां भगवान आए हैं विग्रह के रूप में हमको सेवा का मौका देने के लिए। तो मूर्ख, ये तेरी जिम्मेदारी है कि भगवान का भोग चूहा ना ले जाए, ना कि भगवान की जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई चोर आकर के भगवान के विग्रह को ना ले जाए, इसलिए तो भगवान आए। तुमने मांगा कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, अभी सेवा करना चाहते हो बुला लिया और फिर भगवान को छोड़ दिया, चूहे खा रहे हैं, चोर ले जा रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठ के। ये तुम्हारा काम है भगवान की सेवा करना, भगवान तो चोर भगवान को चोरी कर भी नहीं सकता और ना वो चूहा भगवान को कुछ खा सकता है, भगवान उससे बियॉन्ड है, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आदमी बहुत ग्रेट होता है, अभी प्रधानमंत्री है, अभी यहां पर आए कोई आदमी उनके घर के आगे अनाप शनाप बकने लगे, कोई पागल आदमी है प्रधानमंत्री ऐसा है, वो उसको केयर करेगा, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये नॉट, उनके लिए उसको ध्यान देना भी वो प्रॉपर नहीं है, इट जस्ट इनसिग्निफिकेंट। तो कोई भगवान के विग्रह को कोई चोट लगाए, कोई उनको, ही इज नॉट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ द थिंग्स, हाउ कैन ही बी अफेक्टेड, ही इज कंप्लीटली बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन वो मात्र हमें मौका देने के लिए, हमको सेवा का मौका देने के लिए आए हैं कि तुम मेरी रक्षा करो, जिससे तुम मेरी सेवा करो। भगवान अपनी रक्षा करने में सक्षम है और रक्षा कर ही रहे हैं, वो उनको किसी की रक्षा की होगी, वो सबको मार रहे हैं। भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम, सब लोगों को मृत्यु मैं हूं, वो जो चोरी कर रहा है उसकी मृत्यु भगवान ही है, तो वो क्या भगवान को चोरी करेगा, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। लेकिन जो मूर्ख है, जो जानते नहीं है, वो कहते हैं ये भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाया, हमारी क्या रक्षा करेगा। क्योंकि लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये जो भगवान हम स्थापित करते हैं, ये हमारा एक, हमने एक नौकर स्थापित कर दिया, जैसे कुत्ता पालते हैं ऐसे लोग एक भगवान को पालते हैं, कि कुत्ता मेरी रखवाली करेगा, ऐसे ये विग्रह है ये मैंने पाल लिया, ये मेरी रखवाली करेगा, वो भावना में भगवान की स्थापना नहीं होती है, वो भगवान की आराधना नहीं होती है। भगवान अर्चा विग्रह की पूजा करना, कुत्ते पालने ऐसा नहीं है कि ये भगवान है ये अभी मेरी रक्षा करने के लिए है या मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए है, भगवान ये लो प्रसाद अभी मेरी इच्छा पूरी कर देना, नहीं करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये भक्ति हुई। तो ये जो अनजान लोग हैं, नादान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो लोग इस भावना में आते हैं, तो भगवान वो भी स्वीकार करते हैं, कम से कम मेरे पास आ रहा है, नास्तिक तो नहीं है, कम से कम कुछ चाहिए तो मेरे पास आ रहा है, समथिंग इज बेटर, लेकिन वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब मुझे देखना है कि भगवान की मैं कैसे सेवा करूं, भगवान से मांगना नहीं है कुछ। तो भगवान भी एक व्यक्ति हैं और वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम सुबह उनको उठाते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं, तो कई लोग पूछते हैं अरे भगवान क्या सोते हैं क्या, भगवान क्या खाते हैं क्या? तो क्योंकि इनके मन में हमेशा निराकार कंसेप्शन रहते हैं। तो भगवान खाते हैं, भगवान व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान खाते भी हैं, लेकिन उनका खाना हमारे खाने जैसा नहीं है कि भगवान को भूख लगती है और नहीं देंगे तो मर जाएंगे, उनका खाना ऐसा नहीं है। उनका खाना है कि भक्त जब प्रेम से उनको खाना देते हैं तो वो प्रेम के साथ उसको ग्रहण करते हैं, वो किसी इनकम्प्लीटनेस की वजह से भोजन नहीं कर रहे हैं, वो किसी टायर्डनेस की वजह से नहीं सो रहे हैं। हम लोग को सोना पड़ता है किस लिए, क्योंकि हम थक जाते हैं। तो भगवान का सोना हमारा सोना जैसा नहीं है, लेकिन भगवान भी व्यक्ति है, वहां पर वो लीला होती है, भगवान के वो आनंद वर्धन के लिए। भगवान जैसे कई बार बच्चा पिता होता है, अभी पिता का बर्थडे होता है तो बच्चा पिता को खुश करना चाहता है, करेक्ट? अभी कैसे खुश करे, तो क्या करता है, पिताजी से पैसे मांगता है, मुझे थोड़ा पैसा दो। क्यों बेटे, कुछ कुछ लेके आ रहा है, मुझे चाहिए, मुझे कुछ। तो पिताजी पैसा देते हैं और उस पैसे से पिताजी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद के पिताजी को देता है और पिताजी बहुत खुश रहते हैं। पिताजी का ही पैसा है, पिताजी को ही दे रहा है, लेकिन पिताजी खुश होते हैं कि नहीं होते? वो ये नहीं बोलते ये क्या मेरा ही तो पैसा है, क्यों? क्योंकि वो उसका जो प्रेम भाव है उसको एक्सेप्ट करते हैं, किसी ही वॉन्ट टू प्लीज मी, नहीं तो बच्चा पिता के अलावा कहां से पैसा लाएगा। तो ऐसे ही हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं और भगवान पूर्ण है, तो हम ऑब्जेक्टिवली तो भगवान को क्या दे सकते हैं, सब उन्हीं का है ना। लेकिन जब हम प्रेमवश भगवान को कुछ भी चीज ऑफर करते हैं, यथाशक्ति जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, बेस्ट पॉसिबल, तो भगवान एग्जैक्टली हमारे उस प्रेम को ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को भूख लगी है, लेकिन भगवान भावग्राही, वो जो प्रेम भाव है हमारा जिससे हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान उस प्रेम भावना को ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि यदि कोई इस प्रेम भाव से, भक्ति भाव से मुझे प्रसन्न करने के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कोई इस भक्ति भाव से भी मुझे कोई पानी पुष्प पत्ती ये भी देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे अरे पानी है मुझको तो वो चाहिए, रबड़ी चाहिए, तो भगवान का ऐसा कोई इच्छा नहीं। अगर कोई गरीब है वो रबड़ी नहीं दे सकता, उसका कुछ नहीं है, तो अगर वो केवल भगवान को पानी देगा तो भी भगवान स्वीकार करेंगे। एक्चुअली मानसिक सेवा भी होती है, केवल मन के अंदर यदि भगवान को दिया जाए तो ही भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि मन भी एक एलिमेंट है, जैसे पानी एक एलिमेंट है, वाटर, तो हमने बताया मन भी एक एलिमेंट है, तो आप मन से जब पूजा करते हैं तो ही भगवान की सेवा होती है। लेकिन अगर कोई करोड़पति आदमी है, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान बोले हैं पानी दे दो तो संतुष्ट आता हूं, तो बस भगवान को पानी देता हूं मैं और खुद खाने के लड्डू पेड़े खाता हूं और भगवान को देने के लिए पानी, तो फिर क्या हो गया, उसकी भावना भक्ति भावना नहीं रही, तब फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तुम करोड़पति हो, यानी कि एसेंस है गिव द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू कृष्णा, उसी से तो भाव प्रकट होता है ना, प्रेम। खुद तो रह रहे महल में और भगवान को एक को अंधेरे में गंदी जगह कोने में 2x2 का एक बना दिया कोठड़ी उनका, और खुद के सोने के लिए आलिशान घर, एसी, और वहां उनको, दैट शोज योर नेचर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड। गॉड इज नॉट इन वांट ऑफ एसी, बट इट इज योर, फॉर योर बेनिफिट, आपके बेनिफिट के लिए, बिकॉज इट रिप्रेजेंट योर भावना, आपकी क्या है, इसका मतलब यू डोंट वांट टू सर्व गॉड। तो इसलिए प्रिंसिपल है, जब आप मंदिर आए, ब्रिंग द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर गॉड, जो भी आप अफोर्ड कर सकें बेस्ट। इफ यू कैन जस्ट अफोर्ड वाटर ए लिटिल फ्लावर, कृष्णा वेरी हैप्पीली एक्सेप्ट इट। भगवान जब एक बार गए हस्तिनापुर, तो वहां पर दुर्योधन ने बड़े बड़े पकवान उनको भेजे, भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन विदुर जो उनके महान भक्त थे, तो वो प्रेमवश इतने ज्यादा डूब गए कि भूल गए कि क्या कर रहे हैं, तो केला, वो केला फेंक रहे हैं और छिलका दे रहे हैं, उनको स्मरण नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, इतने ज्यादा भाव विभोर हूं। तो भगवान वो छिलका भी ग्रहण करते हैं। तो ये जो ये प्रेम संबंध है भगवान के साथ। लेकिन जो नास्तिक है जिनके हृदय पत्थर जैसे हैं, वो लोग इसको कभी समझेंगे नहीं। जो निराकार है, निराकार निराकार है, हार्ड इज जस्ट लाइक अ स्टोन। व्हाट दे विल अंडरस्टैंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सर्विंग कृष्णा एंड व्हाट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस रेसिप्रोकेशन। उनके हृदय पत्थर जैसे हो गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, मैं निराकार हूं, क्या ये भगवान की सेवा करना है। हृदय पत्थर जैसा हो गया उनका। सो दे कैन नॉट, बट लॉर्ड रेसिप्रोकेट। जो यहां पर अर्च विग्रह को भक्ति भाव से भगवान की सेवा करता है, वो भगवान का रेसिप्रोकेशन को अनुभव करता है। एक इंसिडेंट आपको बताएं, हमारे लंदन टेंपल में जस्ट रिसेंटली, तो वहां पर भगवान को जब प्रारंभ हुआ मंदिर, तो मंदिर बहुत ज्यादा पैसा नहीं था अच्छा भगवान को भोग लगाने के लिए, तो थोड़ा जितना भी था वो सब देते थे और ऐसा था। लेकिन फिर मैनेजमेंट बदला, कुछ नए मैनेजर आए, प्रेसिडेंट आए, तो उन्होंने बोला कुछ भी हो, हमें भगवान का जो भोग है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, भगवान को अच्छा भोग लगाना है। सुबह में हम एक स्वीट लगाते हैं, अभी ज्यादा भगवान को दो तीन अच्छा अच्छा भोग लगाएंगे, हम स्वीट लगाएंगे, दोपहर को राजभोग देंगे, ऐसे उन्होंने देना शुरू किया। उनकी ऐसी इच्छा थी कि हम भगवान को प्रसन्न करें, अच्छा से अच्छा भगवान को दें। तो प्रैक्टिकली देखा गया, भगवान की जो आउटफिट्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, वो सब छोटी हो गई, सब बदलवानी पड़ी। जस्ट वेरी रिसेंटली, 20-30 years back, सब ड्रेसेस चेंज हो गई, सबको चेंज कराना पड़ा। कृष्णा रेसिप्रोकेट, अगर आप उनको भगवान की तरह देखते हैं और सेवा करते हैं तो, और अगर आप उनको पत्थर मानते हैं तो आपके लिए हमेशा पत्थर ही बनी रहेंगी। दे विल नॉट रेसिप्रोकेट, बट इफ यू विद फेथ, श्रद्धा के साथ आप उनकी सेवा करेंगे, देन देर आर सो मेनी इंसिडेंसेस दैट इज टॉकिंग। साक्षी गोपाल की कहानी सुनी आपने? टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, अदरवाइज सो मेनी थिंग्स वी कैन। तो साक्षी गोपाल एक कहानी है जिसमें भगवान अपने भक्त के साथ बात करते हैं, ऐसी एक नहीं अनेक कहानियां हैं। तो जो नास वो बोल सकते हैं ये सब तो कहानियां हैं, ठीक है, यू विल नेवर बी एबल टू एंटर इनटू दिस इंट्रिकेसीज, आपके लिए वो कहानियां बनी रहेंगी। जो आजकल का आपका जो जीवन है जिसमें सेक्स लाइफ आप कर रहे हो, वो तो आपको रियलिटी लगता है, और भगवान जो ये सब ये लीला करते हैं वो आपको सब इमेजिन लगता है, दैट इज योर मिसफॉर्च्यून। ये तो अनरियल है सेक्स लाइफ, इसमें कोई डेट बिकॉज यू विल डाई, आपको ये रियल है, दिस वर्ल्ड इज रियल। और ये सर जो भागवतम में सब जो कहा गया, दैट इज अनरियल जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट सी, सेम थिंग। तो भक्ति प्रोसेस मीन्स ये समझना कि भगवान यहां कृपा करके हमारे पास देखिए आए हैं, हमें मौका देने के लिए हम कैसे भगवान की सेवा कर करके शुद्ध हो जाए, अपनी चेतना को पुनर्वापिस लाए। तो इसलिए रेगुलरली आप लोगों को यहां मंदिर आना चाहिए, यहां शाम को आरती होती है, सुबह मंगला आरती होती है। तो ये भगवान बोले हैं कि दिस प्लीज इज मी, और जो भी भगवान को पसंद करता है वो हम उससे हम शुद्ध होते हैं, हमारे अंदर भगवान को पसंद करने की भावना प्रकट होती है। तो हम यहां जो नाचते हैं भगवान के विग्रह के सामने, ये भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब मेरे आगे कीर्तन करते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। सो फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड वी डांस, नॉट फॉर आवर प्लेजर। भगवान का नाम कीर्तन भगवान के आनंद के लिए, तो यहां होता है हर दिन सुबह शाम। तो आपका कॉलेज पास में है, हॉस्टल पास में है, तो आइए, मेक इट ए हैबिट रेगुलरली कमिंग फॉर दर्शन, भगवान का दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। मन मना भव मद भक्त, मेरा हमेशा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। मन मना भव मद भक्त मद याजी, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। भगवान बताए हैं नमस्कार करना, नमस्कार करो, वो सरेंडर, मैं आपका सेवक हूं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि अभी मेरी शरण में आना चाहता है, गुड, ही ब्लेसेस। माया आपके ऊपर से चली जाएगी फिर। तो आइए दंडवत प्रणाम कीजिए, साष्टांग, ऐसा नहीं मंदिर के गेट के बाहर से खड़े होकर के, जैसे कि भगवान के ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। कई लोग तो बिल्कुल ऐसा कि ऐसे खड़े आते हैं, बस देख लिया भगवान को, अभी चलो, पूरे अहंकार में मस्त रहते हैं, पूरा पत्थर को देख लिया, अभी दूसरे पत्थर को देखो। नो, यहां सुप्रीम पर्सनैलिटी है। अगर आपके घर में कोई बड़ा, बहुत बड़ा आदमी आ जाए तो तुरंत आपका सिर झुकता है ना, झुकता है, तो ये तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम व्यक्ति है जितनी भी कुछ है एग्जिस्टेंस में, तो उनके सामने हमें स्वाभाविक रूप से ही नमस्कार करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से नहीं करते हैं तो जान के करना चाहिए कि शास्त्र में कहा गया है, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में आके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान गारंटी देते हैं, ये भगवान कहते हैं मेरी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, यदि हम ऐसा करेंगे तो माने भविष्यति सत्यंते, आई प्रॉमिस यू, भगवान प्रॉमिस दे रहे हैं, कभी गलत नहीं जा सकता, आई एम प्रॉमिस सत्यंते, आई एम प्रॉमिसिंग यू, मामे भविष्यति, यू विल कम टू मी, क्योंकि आप फिर भक्त बन जाएंगे तो फिर भगवत धाम जाएंगे, अगर भक्त नहीं बनेंगे तो भगवत धाम जाएंगे क्या करेंगे, बोलेंगे बोर हो रहे हैं आप बताओ, तो इससे ऐसे लोग नहीं जाएंगे वहां, जो भगवान की भक्ति करने की जिनके अंदर रुचि उत्पन्न हो गई है वही लोग वहां जाएंगे। तो मन मना हमेशा भगवान का चिंतन कर, तो भगवान का चिंतन कैसे करते हैं हम लोग, उसकी विधि क्या है, तो भक्ति प्रोसेस में स्टेजेस है, ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, आप खुद अनुभव करेंगे कि आप उन स्टेजेस में से पास हो रहे हैं, आप सब एक्सपेरिमेंट के बाद आप सब जानते चाहते हैं ना वेरिफिकेशन, तो इसमें वेरिफिकेशन है, लेकिन लेबोरेटरी वाला वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लेबोरेटरी के एपरेटस इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है, बट वेरिफिकेशन यू विल गेट, इट इज नॉट ब्लाइंड फेथ, भक्ति इज नॉट ब्लाइंड फेथ, भक्ति परेशान अनुभव, यू कैन एक्सपीरियंस, यू कैन प्रैक्टिकली वेरीफाई इट। तो स्टेजेस बताया है कि भक्ति में आप जब प्रगति करेंगे तो क्या क्या स्टेजेस आएगा, आदर श्रद्धा, स्टार्टिंग विद श्रद्धा, तो आप सब लोग यहां बैठे हैं, छह दिन आए हैं, बारिश हो रही थी फिर भी आए हैं, दैट शोज दैट यू हैव गॉट श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स रिस्पेक्ट, फर्स्ट लेवल ऑफ श्रद्धा मीन्स रिस्पेक्ट, कि आपके अंदर एक थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट है कि ये कुछ अच्छा है, दिस इज समथिंग गुड, ये लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, ये लोग जो भगवद गीता है, दिस इज समथिंग वेरी नाइस नॉलेज, तभी तो आप यहां आए, नहीं तो क्यों आए, आपके क्लास फ्रेंड्स हैं, हमने सबको बोला आने के लिए, वो लोग तो नहीं आए, अरे यार छोड़ यार बेकार है, आप लोग आए क्यों, बिकॉज यू हैड दैट लिटिल फेथ, श्रद्धा, तो दैट इज द बिगिनिंग, फर्स्ट आदो श्रद्धा, तो आप श्रद्धा हुई तो आप यहां आए किस लिए, तो यहां क्या हुआ फिर, साधु संघ, यहां पर साधुगण है, भगवान के भक्तगण है, जो भगवान की सेवा में रत है, तो आप यहां आए फिर आप उनका संग किए, आप उनसे सुने, आप उनके संपर्क में आए, नेक्स्ट स्टेप हुआ, और फिर क्या हुआ, साधु संघ में आएंगे तो साधु आपको क्या बोलेंगे, भजन क्रिया, आपको सिखाएंगे कि भगवान की सेवा कैसे करनी, जो हम कर रहे हैं, ये शिक्षा शरण क्यों ले रहे हैं, हम इससे कोई, हमको बिजनेस नहीं करना है, हमको आपसे पैसे की इससे अपेक्षा नहीं है, कोई छाती की अपेक्षा नहीं है, केवल एक अपेक्षा है कि हम भगवान के दास हैं, इससे हमारा एक कर्तव्य है कि हम सबको भगवान की तरफ मोड़े, जो उनके भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो आप, हम आपको यहां क्या प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी भगवान की सेवा कीजिए, तो क्या हुआ फिर, थर्ड स्टेप भजन क्रिया, आप भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो अभी आप जो छह दिन ये सुने श्रवण किए, तो आप क्या कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, आपको पता भी नहीं हो कि आप सेवा कर रहे थे, लेकिन ये टैक्टिक है कि साधुगण आपको आपके बिना जाने ही भगवान की सेवा में लगाए थे, बच्चे को गोली होती है तो उसको ऐसे ही मिठाई के साथ मुंह में डाल देते हैं, उसको पता नहीं था कि मैंने दवाई खा ली, तो ये भक्तगण का स्वभाव होता है कि अनजाने में ही लोगों को भगवान की सेवा में लगाए थे, क्या सोचे, आपको हमने बोला सर्टिफिकेट कोर्स, सिक्स सेशन सर्टिफिकेट, आप सोचेंगे वो सर्टिफिकेट के लिए जाना है, तो सर्टिफिकेट को इतना वैल्यू नहीं है, मेन क्या है, टैक्टिक है कि सर्टिफिकेट बहाने आप आओगे तो सुनोगे, आपकी सेवा शुरू हो जाएगी, यानी कि सर्टिफिकेट आपको मिले पर डोंट वरी, लेकिन मेन रीजन वॉज कि आप लोग सेवा करना शुरू करें, तो श्रवण, तो आपकी पहली सेवा शुरू हुई, आप सुनना शुरू किए, भजन क्रिया, और ऐसे ही श्रवण से शुरू होकर आगे आएगी सेवा, बताऊंगा मैं आपको अभी, ऐसे सेवा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति, आपके हृदय के अंदर जितना भी कलमश है, ये सब जो भौतिक जगत में भोगने की सब इच्छाएं हैं, धीरे धीरे वो सब समाप्त हो जाएंगी, तो आप लोगों को फिर डर लगने लगेगा, अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, भौतिक जगत में भोगने की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो फिर हम सब सब बाबा जी बन जाएंगे, वो तो हमको बनना नहीं है, हमको तो गृहस्थी में रहना है, हमारे माँ बाप हैं, ये क्या, नहीं, गृहस्थ आश्रम भी भोग के लिए नहीं है, तो आप वो रेगुलेटेड धीरे धीरे भोग की वृत्ति को घटाने के लिए है, तो भले ही आप सभी लोग ब्रह्मचारी ना बन सके, बन जाए अच्छा है, नहीं भी बन सके हैं गृहस्थ आश्रम में जाए तो भी भक्ति आप कंटिन्यू कर सकते हैं, करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब एकदम से सीधा स्ट्रेट पाथ लें। अगर आपको इतना कन्विक्शन नहीं आया है, यू कैन गो ग्रेजुअल पाथ, सीधी सीधी जोड़ सकते हैं धीरे धीरे, सो डोंट बी अफ्रेड। तो भजन क्रिया से इतना अनर्थ है, सब गंदगी निकल जाएगी और फिर आएगी निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, स्ट्रॉन्ग फेथ। कृष्णा कर्म कैला सर्व कर्म कृत हो, अगर मैं भगवान की सेवा करता हूं, दैट्स ऑल, दैट इज द लास्ट थिंग, नथिंग एल्स टू बी डन। लाइफ ओनली एम इज टू सर्व कृष्णा, नथिंग एल्स इज देयर, नो मोर डिजायर्स, ओनली टू सर्व कृष्णा, निष्ठा। और फिर आगे चल के रुचि भगवान की सेवा में, फिर स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होगी, खुद इच्छा करेगी सेवा करने, और फिर आसक्ति और फिर भाव प्रेम इत्यादि। तो ये प्रोसेस है। तो भजन क्रिया, अभी जो हम अभी आप जिस स्टेज में आप अभी एंटर हो रहे हैं, यानी कि भगवान की सेवा करना शुरू कर रहे हैं, तो वो सेवा क्या है? नव विधा, नौ प्रकार की है। हा? क्या क्या है? प्रथम कौन सी है? श्रवणम, सुनना, फिल्मी सॉन्ग नहीं, कृष्ण सॉन्ग, भगवत गीता गीत, वो भी गीत है, पर किसका गीत है? भगवान का गीत है। तो अगर आप फिल्मी गीत सुनेंगे तो एक्टर और एक्ट्रेस की तरह बंदर बंदरे की तरह नाचना पड़ेगा, और भगवान का गीत सुनेंगे तो भगवान के साथ आनंद से नाचेंगे। नाचना हम सबको अच्छा लगता है ना, तो आपको अगर फिल्मी गीत सुनेंगे तो बस केवल मन में सोचना पड़ेगा कौन हीरो आजकल फेमस है, तो पता भी नहीं है जो भी है, तो वो नाचता है एक हीरो हीरोइन, आप उसको देख के सपने देखते हैं, काश मैं वहां होता, क्योंकि आपकी इच्छा तो है लेकिन आप कहां फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, तो मन में सोचते हैं तो यार कभी कभी बाथरूम में डांस करते हो या अपने रूम में बंद करके डांस करते हो। लेकिन अगर आप भगवान के साथ संपर्क करेंगे तो आप भगवान के साथ नाचेंगे और वो नाच दिव्य स्तर पर होगा, वो आपको वास्तव में आनंदित करेगा। तो भगवत गीत, तो श्रवणम भगवान के विषय में सुनना, भगवान का नाम सुनना, भगवत गीता सुनना, भागवतम सुनना जो आप कर रहे हैं, और फिर कीर्तनम जो सुना है उसको बोलना, जो मैं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? श्रवण, और मैं क्या कर रहा हूं? कीर्तनम। मैं भी अपनी प्रगति के लिए कर रहा हूं, मेरी भी अपनी ये सेवा है, आप भी सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा कर रहा हूं। कीर्तनम, और फिर आता है स्मरणम। जब खूब श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो स्वाभाविक हमेशा भगवान का स्मरण रहने लगेगा, जैसे जैसे शुद्ध होंगे। और फिर आगे पाद सेवनम, भगवान के अच्छा विग्रह, आप आगे जाएंगे, हमारे भक्त हैं तो दीक्षित होते हैं, आगे चलते हैं, और फिर आगे चलते हैं तो उनको भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, पाद सेवन करते हैं अच्छा विग्रह की, उनको नहलाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं उनका, उनको भोग अर्पण करते हैं, ऐसा सब सेवा करते हैं, पाद सेवनम, दास्यम दास की तरह से, सख्यम सखा की तरह से सेवा करते हैं, ऐसे करके अलग अलग उसके आगे अंग हैं, आत्मनिवेदनम पूर्ण शरणागति। तो ये भक्ति के अलग अलग अंग हैं जिनको आप लोग इंप्लीमेंट करें, करना चाहिए। और जैसे जैसे आप ये भक्ति के अंगों को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि मेनली श्रवणम और कीर्तनम, तो आप पाएंगे कि आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, आप प्रगति कर रहे हैं इन स्टेजेस में, आपकी श्रद्धा दृढ़ होती जा रही है, आपके हृदय से कलमश निकलता जा रहा है, काम क्रोध निकलता जा रहा है, ये आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, आपकी चिंताएं सब समाप्त हो गई हैं, अभी आप एक दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भगवान की सेवा की रुचि बढ़ रही है, और बहुत ही जगत के प्रति ये सब बेकार, आपको ज्ञान हो रहा है, अरे सब बकवास है, टेम्पररी, तो खुद अनुभव कीजिए और देखिए, इसलिए प्रैक्टिकल है। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, सब स्टेजेस आएंगी, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जब ये सब स्टेजेस में आया हूं तो लास्ट स्टेज भी आएगी, क्यों नहीं आएगी, करेक्ट? सो देन कंफर्मेशन हो गया, प्रूफ हो गया, दैट्स ऑल। तो भक्ति अंधविश्वास नहीं है, शास्त्र में विश्वास और उसके बाद प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करके, उसको अप्लाई करके आप देखो खुद। तो इसलिए कंक्लूजन में अभी यहां सिक्स सेशन से हम कहां जाएंगे, केवल सिक्स सेशन से एंड नहीं है, सिक्स सेशन शुड बी द बिगनिंग ऑफ डिवोशन लाइफ इन योर लाइफ। भक्ति सेवा का प्रारंभ होना चाहिए सिक्सेशन से, ना कि अंत। बस खुद सुन लिया, भगवद्गीता सुन लिया, खत्म। भगवद्गीता कभी खत्म नहीं हो सकता, भगवान जी की सेवा कभी खत्म नहीं होती है, चलती रहती चलती रहती चलती रहती अनविरत। तो इसलिए एक तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करना प्रारंभ करें, चैंटिंग। तो अभी हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे हरे कृष्ण मंत्र एक माला करने का, और वो प्रैक्टिस आप हर दिन का एक नियम बनाइए कि हर दिन मेरे को एक या दो माला करनी है। तो आपके फ्रेंड्स बोलेंगे, अरे भाई भगत बन गया, बाबा बन गया, मेरे को माला करने लगा। तो आप झिझकिए मत। तो जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपके फ्रेंड्स बोलते हैं बहुत बढ़िया, अभी अभी हमारी कैटेगरी में आ गया, और जब माला करते हैं बोले अभी दूर जा रहा है ये, भगत बन गया। तो लेकिन अच्छा क्या है, जब आप स्मोक करेंगे और पतन होगा, नरक में जाएंगे, जब अंत में यमराज आएंगे तो बोलेंगे बेटे अभी चलो नरक, तो आप बोलेंगे क्यों स्मोकिंग करते हो? इसलिए बोले मेरे फ्रेंड्स ने बोला था। तो उस समय फ्रेंड्स हेल्प करेंगे आपकी कि हाँ हाँ हमने बोला था, इसका कोई कसूर नहीं है। तो फ्रेंड्स भी आप देखेंगे वो भी नरक में जा रहे हैं साथ साथ में, वो क्या कर लेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स का क्या फायदा? तो इसलिए बी बोल्ड, जो चीज सही है वो सही है। और वैसे भी आजकल तो फैशन का जमाना है, जो भी आप करेंगे वही फैशन है, तो फिर क्यों ना ये फैशन किया जाए, चैंटिंग हरे कृष्णा। अगर आप इसको करते जाएंगे तो लोग कहेंगे नया फैशन शुरू हुआ है, सब लोग चैंट करना शुरू कर दें, वेरी नाइस फैशन, सब लोग तिलक लगाना शुरू कर दें, कंटिन्यू फैशन, वेरी गुड, दिस इज अ गुड फैशन। तो होने दो फैशन, चलने दो, यू बी द स्टार्टिंग ऑफ दैट न्यू फैशन। क्या बात है, अच्छी बात है ना। सो बी ए हीरो, हीरो डिवोटी। तो चैंटिंग करना शुरू कीजिए और रेगुलर यहां आइए, और यहां पर क्लासेस अरेंज की गई हैं, रेगुलर वीकली क्लासेस। तो अब ये प्राथमिक कोर्स है, पढ़िए रेगुलर भगवद्गीता को, पढ़िए और सुनिए। यहां से बुक ले जाइए, सबके पास एक एक बुक होनी चाहिए, और उसको सिस्टमेटिकली स्टडी कीजिए, सब बुक्स को एक एक करके दे दे, और जो स्वयं मैंने यहां भक्त हैं आके उनसे पूछिए। तो श्रवण कीजिए इस प्रकार से, और मंदिर आइए धीरे धीरे आगे पकड़। हरे कृष्णा। यहां पर समाप्त करेंगे, कोई प्रश्न किसी का? यस, माला अर्पण, माला है ना, जल्दी दो फटाफट। हाँ, तो भगवान कृष्ण अनेक अनेक मंत्र हैं, तो श्री कृष्ण शरणम मम वो भी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो सब कृष्ण के ही मंत्र हैं, कृष्ण भगवान की पूजा के लिए हैं। तो एक दवाई होती है उसके अनेक अनेक ट्रेड नेम होते हैं, लेकिन आप जो डॉक्टर लिख के देता है वो दवाई देते हैं। तो उसी प्रकार से कलयुग के लिए शास्त्रों में इस महामंत्र को बताया गया है, कलिशंतरना उपनिषद में। ये हमारे इस्कॉन का बनाया मंत्र नहीं है हरे कृष्ण मंत्र, ये कलिशंतरना उपनिषद में से दिया गया है। इति शरोषकम नाम नाम कलि कलमश नाम स्नम नता प्रतर उपाय सर्व विदेश दिशते। ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है कलयुग में, ये रिकमेंडेड है ब्रह्मा जी के द्वारा कि इसके अलावा कोई आसन, तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप श्री कृष्ण शरण नमः बोले, वो भगवान का नाम बोल रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन जो चीज रिकमेंडेड है क्यों ना उसको बोला जाए, जो चीज आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा बोलो तो क्यों ना वो किया जाए। ओके, अनगिनत भगवान के अवतार ऐसे हैं जैसे नदी में लहरें, तो उसकी कोई गणना नहीं है, अनगिनत अवतार होते हैं भगवान के, नोबडी कैन काउंट। उनके तो अवतारों की कैटेगरी भी अलग है, लीला अवतार, गुणा अवतार, शक्ति अवेश अवतार, ना जाने कितने प्रकार के, और वो ही सवान गिनत।